अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज चेलम था, उसके जुलूस पूरे पाकिस्तान में निकले। एक डर और खौफ की फ़िज़ा जाने क्यों ऐसे 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 दिनों में पूरे पाकिस्तान में होती है। शायद उन खबरों की वजह से भी जो हम देखते हैं कि कराची जिसमें कहा जाता है फ़ौज ने कंट्रोल संभाल लिया, कंटेनर्स लगा के शहर बंद कर दिए जाते हैं, और उसकी वजह एक पिंडी का वाक़या भी थी जो वाक़या हुआ, जिसके बाद एक टेंशन में मज़ीद इजाफा भी हुआ। आज भी कराची, मानसेरा, पिंडी के कुछ वाकयात के अलावा बाय एंड लार्ज दिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पुरसकून गुजर गया है, लेकिन इससे निकलने का कोई रास्ता भी तो होना चाहिए। क्या क्या इसी खौफ में वो तमाम लोग जो अपनी मज़हब की अपनी अकीदे के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, क्या इसी खौफ में जिंदा रहेंगे? क्या इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स बंद कर दिए जाएंगे? क्या इसी तरह सड़कें बंद कर दी जाएंगी पाकिस्तान में? क्या हम इस तरह गुजारा करना चाहते? कोशिश करेंगे इसका कोई हल ढूंढने की इस प्रोग्राम में। हमारे साथ अलामा नासिर बासा मौजूद है, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी जनरल बैतुल मुस्लिमीन के रजा रूमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तजिया निगार है। हमारे साथ मुफ्ती तनवीरुल हक थानवी साहब मौजूद है जामिया अहतशामिया से, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब। और हारून रशीद साहब से बात करेंगे, लेकिन इजाजत है पिंडी में हमारे रिपोर्टर खड़े हैं जरा, क्योंकि एक ऐसा फ्लैश पॉइंट था पिंडी जिसकी वजह से पिछली दफा हालात खराब हुए 10वीं मुहर्रम को। अजहर अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम काजी
साहब। अजहर कैसे हालात, ठीक गुजर गए आज? जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए हालात किया क्या गया वहां पर, क्या शहर सील कर दिया गया था फिर से?
जी देखिए काशिफ साहब, बिल्कुल बहुत यहां पर एक टेंशन की सूरत हाल थी, कुछ ट्रबल्ड एरिया थे जो 10वीं मुहर्रम को यहां पर नाखुशगवार पेश आया। उसके बाद से पंजाब गवर्नमेंट जो है मुसलसल इन्वॉल्व थी रावलपिंडी इंतजामिया और पुलिस के साथ। दो रोज पहले तक ये सूरत हाल थी कि दो ऑप्शंस पर यहां पर गौर किया जा रहा था कि शायद महदूद पैमाने पर जो है कर्फ्यू लगा लिया जाए, लेकिन जो स्ट्रेटजी थी रावलपिंडी इंतजामिया की और पुलिस की वो इंतहाई कामयाब रही। इस वक्त जो ओवरऑल आज जुलूस में 7000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात थे और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस उनको ये कहा गया था कि रखना है, कोई भी हो किसी को भी रिट चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जानी। यही वजह थी कि अभी जो जुलूस है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। अब से तकरीबन 8 बजे ये तय हुआ था कि ये जुलूस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएंगे। 7 कंपनियां रेंजर्स की पुलिस के साथ थी और जो मरकजी कंट्रोल रूम था पंजाब गवर्नमेंट से जो नुमाइंदे थे मुसलसल यहाँ पर अलर्ट थे, फजाई निगरानी की गई। मोबाइल फोन अगरचे अभी भी बंद है, जुलूस खत्म जो होने के बाद जब डिस्पर्सल हो जाएगा जुजवी तौर पर ये सर्विस बहाल होना शुरू हो जाएगी। इस दौरान हम ये भी बताते चले कि एक ग्रुप की जानिब से 3 मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे किए गए। उनका ये कहना था कि उनके जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ जो क्रैक डाउन किया गया था वो जो है उनको रिहाई की जाए। इस हवाले से जब हमारी पुलिस और इंतजामिया से बात हुई तो उनका यह कहना था कि अमनो अमान के क्याम के लिए ये क्रैक डाउन इंतहाई जरूरी था, लेकिन ओवरऑल जो है सिचुएशन अभी पुरअमन है और कुछ देर बाद मुकम्मल तौर पर जुलूस जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा।
सो अजहर आप ये कह रहे हैं कि क्रैक डाउन करके गिरफ्तारियां की गई हैं, 7000 पुलिस एहलकार, रेंजर्स, यानी एक शहर में अमन कायम रखने के लिए ये सब कुछ करने की जरूरत है और उससे ज्यादा भी शायद। इंतजामिया बैठी है, फौज कर्फ्यू लगाने का सोच रहे हैं, इतना हालात खराब है, इतना बड़ा फ्लैश पॉइंट बन जाता है कोई इस तरह का दिन?
काशिफ जो अलर्ट्स थे, थ्रेट अलर्ट्स थे जो 10वीं मुहर्रम को नागार वाकया पेश आया, तो ये रावलपिंडी ही एक वो जिला था जहां पर सबसे ज्यादा अंदेशा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा कुछ अलर्ट्स जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से आए थे उसमें ये कहा गया था कि जो थर्ड पार्टी है वो भी इस हवाले से सिचुएशन में जो है वो फायदा उठा सकती है, जिस तरह कलदम तहरीके तालिबान का जो है वो थ्रेट आए थे कि वो हकीमुल्ला मैसूद का और जो है शमसुर रहमान जो माविया है उनके हवाले से बदला लिया जा सकता है, और इसी हवाले से कुछ और अलर्ट्स भी थे। तो मजमुई तौर पर ये फैसला किया गया कि रावलपिंडी को किसी सूरत में जो है वो लूज नहीं छोड़ा जाएगा, ताकि अगर कोई नाखुशगवार वाकया यहां पर पेश आता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली पूरे मुल्क में जाना है। इसलिए यहां पर एक जो है मुकम्मल तौर पर जो पुलिस है, इंतजामिया है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी मुकम्मल आपस में मुआवनत थी और यही वजह है कि अब ये जुलूस जो है वो बखैर वाफियत अपने इस्लामी जो मंजिल है वहां पर पहुंच चुका है।
जी बहुत शुक्रिया आपका जी। अजहर बिन करीम, अजहर बिन करीम हमारे नुमाइंदे, आज सारा दिन रामनी में इन्हीं हालात पर नजर रखे हुए थे। जिंदगी हमने मुअत्तल कर देनी, मोबाइल फोन हमने पूरे पाकिस्तान में बंद कर देने,
बिल्कुल
کرفیو لگانے کی نوبت آ جانی ہے. بالکل. یہ ہے پاکستان.
بالکل.
اور یہ اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی کہ یہاں پر کوئی اگر اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق کچھ کرنا چاہے تو اس کے لیے سیکیورٹی دینی پڑے گی.
جی, نماز پڑھنے کے اوپر ابھی آپ کے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے شو سے پہلے کہ ابھی حال ہی میں ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں نماز پڑھتے ہوئے ان کے اوپر حملہ کیا گیا. آپ دیکھیے کہ یہ کتنا بہیمانہ یہ اقدام ہے. کہیں ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی ملک دیکھ لیجئے, اسلامی ملک جہاں پر یہ عالم آ گیا ہوگا عید کی نماز پر, نماز جنازہ پر, جمعے کی نماز پر, محرم کے جلوسوں پر اس طرح سے فائرنگ یا خطرہ ہو.
ہیلی کاپٹر سے آپ کو دیکھیں یہاں پر کی جاتی ہے سرویلنس. ہیلی کاپٹر یہاں پر سرویلنس کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ہو رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک امید ہوتی ہے کہ شاید انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہم اس پہ گزارے کر رہے ہیں.
دیکھیے طریقے تو ہیں, طریقے کیوں نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو جو پولیٹیکل ول, جو وسائل, جو کمٹمنٹ اور جو کنسنسس ہے معاشرے میں وہ نہیں مل رہا. کیونکہ ہمارے یہاں ایک یہ 1980 کی دہائی سے ایک نظریہ پروان چڑھایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ چند مسلمان میں جو ہیں وہ کم مسلمان ہیں اور کچھ زیادہ ہیں. 74 میں تو ہم نے ایک جو تھا پورے کا پورا گروپ پاکستانیوں کا ان کو ہم نے کافی ڈکلیئر دے ہماری پارلیمنٹ قرار دے دیا. اس کے بعد وہی جو اقدام ہے اس کی جو کلاز ہے اس کا بہانہ لے کر آج اور لوگوں کو اور مسالک کو بھی اسی طرف ہمارے چند انتہا پسند مصر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو کہ احمدیوں کے ساتھ 1974 میں ہوا. اب بدقسمتی سے یہ ریاست کا کام ہے کہ ریاست کو نیوٹرل ہونا پڑتا ہے. ہر شہری کا جان و مال آئین کے مطابق اس کی حفاظت ریاست پہ فرض ہے اور وہ کسی بھی طرح سے اسے کوتاہی نہیں کر سکتی, چاہے وہ مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, ڈز ناٹ میٹر, مگر ہماری ریاست اس کو کرنے میں ناکام ہے.
لیکن یہاں پر اس لیے بھی ناکام ہے کیونکہ یہ چیزیں اب الیکشن مہم کا حصہ بن گئی ہیں. یہ نعرے اب یہاں پر یہ نعرے چلتے ہیں, یہ جو اختلاف ہے یہاں پر جو ریاست کے اندر. لیکن جب آپ نے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈکلیئر کیا تو پھر اب اسلام بھی تو اس میں نافذ ہوگا. اب یہ اسلام کے بغیر تو نفاذ کے بغیر تو نہیں چلیں گے. لیکن کیوں اتنا ڈر خوف ہوتا جی؟ کیوں ہم نہیں چل سکتے, ایک دن ہم نہیں گزار سکتے بغیر اس خوف کے کہ کہیں ہنگامے ہوں گے, کہیں کرفیو لگیں گے جس طرح پنڈی میں لاسٹ ٹائم دیکھا ہم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اربعین سید الشہداء نواس رسول کے شہادت کا 40th دن تھا اور پاکستان میں شیعہ اور سنی نے مل کر منایا ہے آج اس کو. اور راولپنڈی میں آج عجیب صورتحال تھی, یعنی لاکھوں لوگ تھے, کئی کلومیٹر تک خواتین موجود تھیں, ان کا بہت بڑا اجتماع تھا, بچے لے کے آئی تھیں, اٹھائے ہوئے تھے. یہ ڈرنے والے لوگ نہیں تھے, خوفزدہ لوگ نہیں تھے, یہ عشق حسین اور عشق رسول میں آئے تھے اور دہشت گردوں کے مقابلے میں ایک بہت بڑی نہ کہنے آئے تھے کہ ہم دہشت گردوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں, ان سے ڈر کے گھروں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ جلوس زندگی ہیں, حیات ہے معاشرے کی. اس بات کا اعلان ہے کہ طالبان یا ان کے ساتھی جو بٹھی بھر دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے عوام کو ڈرا کر, دھمکا کر, خوفزدہ کر کے بازاروں کو, گلی کوچوں کو, مسجدوں کو, اسکولوں کو سنسان کر دیں گے. یہ ناممکن ہے. پاکستان کے عوام قبول کرنے کو تیار نہیں. اور آج بالخصوص راولپنڈی کے تجار, راولپنڈی کے اہل سنت اور اہل تشیع کی وحدت کا دن بھی تھا. راولپنڈی کے تاجروں نے بھرپور آج اس جلوس کی حمایت کی, تاجروں کی انجمن کے پریزیڈنٹ نے حمایت کی, انہوں نے کمشنر سے کہا, انہوں نے ڈی سی او سے کہا, انتظامیہ سے کہا, ہمیں جلوسوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے, انتظامیہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. لہذا یہ کہنا یہ دہشت گردوں کی کوشش یہ ہے کہ یہاں ہر چیز کو سیکیورٹی پرابلم بنا دے. یہاں اگر کرکٹ کا میچ ہو وہ بھی سیکیورٹی کا پرابلم بن جائے. جو کام بھی پاکستان میں, بازار, سکول, چرچ, ہر ایک چیز کو سیکیورٹی تھریٹ دے کر وہاں پر لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے. لیکن آج کے دن دہشت گردوں کی شکست کا دن تھا اور پاکستان اور دین اور اسلام سے محبت کرنے والوں کی فتح کا دن تھا.
لیکن میرے پاس یہ فگرز ہیں جی, جو فرقہ وارانہ وائٹ میں جو اب تک لوگ جاں بحق ہوئے ہیں, ये फिगर्स देख के कहां लगता है जी इस मुल्क में सब अच्छा है या अब खराब हुआ जब से 2001 के बाद से, या मैं 90 से मेरे पास
ये तो जिया साहब ने जो बीज बोया था वो आज काश्त कर रहे हैं आप
जी।
जियाई एस्टेब्लिशमेंट ने जो पाकिस्तान में इस तकफीरियत का, इस दहशतगर्दी का, इंतसाबंदी का, इंतापसंदी का बीज बोया, मदारिस बनाए गए, ये जितने भी मदरसे जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं जगह जगह जो है, ये छोटे छोटे वजीरिस्तान है।
लेकिन मैं थानवी साहब से पूछता हूं, थानवी साहब क्या आपको लगता है कि ये बीज बोया गया है, वरना ये फिगर्स तो ये 89 से मेरे पास मौजूद हैं, हजारों की तादाद में लोग इन फिरका वराना फसादात में या एक्ट ऑफ वायलेंस में मारे गए। थानवी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है?
हेलो जी
जी, थानवी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है।
तो सर ये क्यों इतना कुछ हो रहा है, क्यों इतना वायलेंस है इस मुल्क में, मजहब के नाम पे, सियासत के नाम पे? वायलेंस हमारा बड़ा आसान है, बंदूक उठा के गोली मार दे। लगता थानवी साहब को आवाज ही जा रही है, अगर हम उनसे रابطہ दोबारा कर पाए। हारून रशीद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जरा कुछ
ये आ रही, बिल्कुल।
हारून रशीद साहब आपको इस पर रोशनी डालेंगे?
आइन में खराबी है।
देखिए गुजारिश ये है कि इख्तलाफात दुनिया के तमाम माशरों में मौजूद होते हैं, अगर उन इख्तलाफात को एक्सप्लॉइट किया जाए, मुबालगा किया जाए और उसे नफरत में तब्दील किया जाए तो तसादम की सूरत पैदा होती है। दूसरा उसूल ये है कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं मिलता, कानून नाफज नहीं होता, वहाँ गीबत से बात शुरू होती है, फिर धड़ेबंदी तक पहुंचती है, बुगजुअनात पैदा होता है, फिर जत्थाबंदी होती है। बाकी अवामल आपको मालूम है कौन कौन से मालिक किस किस की मदद कर रहे हैं। ये एक नफरत की फिजा है, दोनों तरफ के लोग उसके जिम्मेदार हैं। एक खास मकतब फिक्र के लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इसको ज्यादा हवा दी है। दूसरी तरफ ये है कि कानून नाफज नहीं होता, जो आदमी ज्यादती कर रहा है चाहे वो कोई हो, किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, कोई कितना ही मुमताज आदमी क्यों ना हो, जब कानून का खौफ नहीं होगा तो ये सब कुछ होगा। रियासत को अपनी रिट कायम करनी चाहिए और रियासत की रिट कायम करने का तरीका यह है कि ज्यादा ताकतवर लोग जो कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हो उन्हें सजा दी जाती है।
लेकिन हारून साहब, जब जिस जगह मजहब का जिक्र आता है
होगा तो इट विल डाई डाउन। एक काम है एजुकेशन का,
एजुकेशन
ये देरपा काम है, सब लोगों को समझाने की जरूरत है कि असबियत न फैलाएं, इसमें सबका नुकसान है, किसी एक का नुकसान नहीं है, सभी का नुकसान है। 47 में जब हमारे पास एक बड़ा काज था मुल्क बनाना था तो कोई शिया सुन्नी इख्तलाफ नहीं था, तमाम फिरके मुत्तहिद थे, कुछ लोग बाहर रह गए थे जिन्हें उम्मत ने मुस्तरद कर दिया था। एक बड़े काज के लिए जब आप काम नहीं करते और छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं और कानून नाफज नहीं होता और रियासत अपनी रिट कायम नहीं करती तो फिर यही होता है।
मैं एक ब्रेक ले लूं थानवी साहब से, तब तक हम कोशिश करते हैं, उम्मीद है उनसे रابطہ हमारा कायम हो गया होगा।
आवाज साफ नहीं है।
एक ब्रेक लेते हैं नाजी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजी, अगर थानवी साहब से मैं उनसे रابطہ नहीं हो रहा था, उम्मीद है उनसे रابطہ हो गया। थानवी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है।
सर ये क्या मसला है, इस क्यों इतनी टेंशन है, क्यों इतना खौफ होता है ऐसे दिनों में, क्या मसला क्या है, इस सारी इसकी जड़ क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काशिफ अब्बासी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझको भी इस कार्य खैर में शामिल किया। भाई बात असल में यह है कि ये इतना अब पुराना सिलसिला हो गया है, 20-25 साल पर यह मुहित है, और हकीकत यह है कि इसको अगर शुरू से इसकी तरफ तवज्जो दी जाती, इसको दबाया जाता, ख़त्म किया जाता तो आज ये सूरत हाल ना बनती जो जितनी परेशानी और आज सबको। असल में बात सिर्फ ये है कि हम ये बात देख रहे हैं कि ये असल काम जो है ये हुकूमत का है। ये जो हजरात समझते हैं कि भाई ये उलमा की जिम्मेदारी है, उलमा ने कभी अपनी जिम्मेदारियों में कोताही नहीं की और वो हमेशा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुछ एलिमेंट जो है शक्ल मौलवियों की शक्लें बना के और कुछ मजहबी लबादे ओढ़ के ایسے بھی اترے ہوئے میدان میں کہ جو یہ آج ان کی وجہ سے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, تو ان کی پکڑ دکڑ کرنا یہ حکومت کی اور جو بھی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے.
مفتی صاحب آپ جانتے ہیں اس ملک میں اگر کسی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی گئی تو کتنا بڑا شور پڑ جائے گا حکومت کے خلاف.
ہاں یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی, اور میں آپ سے عرض کروں میرا خیال ہے کہ میں نے یہ گورنر کے فلور پر یہ بات میں نے علماء کی موجودگی میں کہی تھی آج سے دو سال سال ڈیڑھ سال پہلے. میں نے کہا کہ مجھے یہ جملہ سن کے بڑی ہنسی آتی ہے کہ حکومت جب یہ سمجھتی ہے کہ صاحب یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے اور بڑا حساس ہے. کوئی مسئلہ سینسیٹیو نہیں ہے. اس ملک میں جو دین اور مذہب کا کام کرنے والے ہیں وہ حکومت کی ریٹ سے باہر نہیں ہیں اور وہ بھی ریاست کا ایک حصہ ہیں. اگر چور ڈاکوؤں کے اوپر کارروائی ہوتی ہے تو ایسے مصنوعی مولوی یا ایسے مصنوعی حضرات جو یہ خرابیاں کر رہے ہیں بالکل ان کو پکڑا جائے اور ان کے جرم کو سامنے لایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ بات ختم کر دینی چاہیے کہ یہ سینسیٹیو مسئلہ ہے. کوئی سینسیٹیو نہیں ہے, اس پر جب تک سخت قسم کا ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا یہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر اس کی صحیح طور پر اس کی کارروائی حکومت کرے تو میں تو خیر کچھ نہیں ہوں, میں تو بہرحال میری, لیکن وہ صحیح علماء بھی علماء حق بھی انشاءاللہ حکومت کی اور اداروں کی پشت پر ہوں گے.
درست,
یہ اس کا کام کا اگر وہ کریں تب یہ کچھ ہو سکتا ہے.
آپ یہ کہہ رہے ہیں معاملہ اتنا سمپل ہے, اتنا سادہ معاملہ ہے کہ اگر حکومت کچھ کرنا چاہے تو حکومت کچھ کر سکتی ہے. جاتے ہیں ہارون صاحب سے پوچھوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کچھ کر پائے گی. ہارون صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کچھ کر سکتی ہے؟ یا اگر مدرسوں کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں مدرسے مسائل کی جا رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کچھ مولوی ایسے ہیں جو مسائل کی جا رہے ہیں, یہ تو سوچ کا مسئلہ ہے. سر ہم یہاں بیٹھ کے نہ مذہب پر بات کر سکتے ہیں نہ عقیدے پر بات کر سکتے ہیں. مجھ پہ تو فوراً فتویٰ لگ جائے گا کہ جی آپ کافر ہو گئے ہیں, آپ تو دار اسلام سے خارج ہو گئے. اس حد تک ہم جاتے ہیں, ہم تو بحث بھی نہیں کر سکتے کھل کے ان چیزوں پر. حکومت کیسے ہاتھ ڈال سکتی؟ ہارون صاحب نہیں
جی, دیکھیے آپ نے یہ کہا کہ حکومت کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. دیکھیے تین چار سورسز ہیں یہ جو ملک میں انتہا پسندی اور وائلنس کا جو کلچر 30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلا تو سورس ہے چند مخصوص مدرسے جو کہ ان ریگولیٹڈ ہیں اور وہ جس طرح کی تعلیم فراہم کرتے ہیں. دوسری بہت بڑا سورس ہے یہ دیواروں پر وال چاکنگ. اگر آپ یہاں سے سٹارٹ ہو جائیے نیچے کراچی تک جائیے, آپ کو دیواروں پہ جا بجا دکھائی دے گا فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے, یہ ہے کیا یہ. اور یہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی ہندوستان والے اور امریکہ والے اور اسرائیل والے آ کے, تو کیا وہ آ کے سی آئی اے
آپ نے بحث کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں بحث کا سکوپ ملا ہے آپ کو کسی کے ساتھ بھی بات کرنے؟
نہیں, میں بحث کرتا ہوں, وہ ایک الگ بحث ہے.
اچھا تیسرا بحث وہی ہے, تیسرا مسئلہ یہ کیونکہ بحث نہیں ہے,
جی
کیونکہ ڈبیٹ نہیں ہے, غلط ٹھیک کا فیصلہ نہیں ہوتا, سارے اپنے اپنی جگہ پہ کھڑے, تم غلط ہو وہ کہہ رہے تم غلط.
دیکھیں کاشف بھائی بات یہ کہ بحث تو ہوتی ہے مگر بحث کا مسئلہ یہ ہے
کہ
گروپ جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں, آپ کی اور میرے ہاتھ میں ہتھیار نہیں. اس وقت یہاں علامہ صاحب بیٹھے ہوئے یہ بھی نکھتے ہیں اس وقت, مگر وہ جو گروپ ہیں اگر ہم ان سے بات کریں گے آپ یہ وال چاکنگ کیوں کرتے ہیں؟
میں نے پنڈی میں بھی لوگوں کو ہتھیار اٹھاتے دیکھا ہے.
جی جی وہ ہم
نے بھی دیکھا ہے
بدقسمتی سے.
مذہب اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے, اس کے اوپر اگر کئی آپ سے کوئی اختلاف کرے گا وہ بندوق اٹھا لیتے ہیں سر.
مگر میں جو بات میں مختصر سی بات ہے میں مکمل کر لوں کہ میں نے آپ سے وال چاکنگ کی بات کی, میں نے آپ سے مدرسوں کی بات کی, اور تیسرا جو ہے لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال. دیکھیے 1960 سے قانون موجود ہے, اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنے مخالف فرقے کے خلاف ایسی ایسی گفتگو اور تقریریں کرتا ہے کہ آپ سمجھے کہ اس قدر اشتعال آ جاتا ہے لوگوں کو, چاہے کوئی بھی فرقے سے ہو. اور چوتھا سب سے اہم جو مسئلہ ہو گیا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے مین سٹریم میڈیا کے اندر بھی یہ اس چیز کو آبفسکیٹ کیا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے. اگر ایک
پایا نہیں جاتا, میں آپ کو آنسٹ بات بتاؤں, آئی لو ٹو ہیو اے ڈیبیٹ. مجھے بڑا شوق ہے میں ڈیبیٹ کروں اس ایشو پر, میں نہیں کر سکتا. مجھے معلوم ہے کہ جس سے اختلاف کروں گا آگے سے
فتوی لگانے. دیکھیے آپ کی میں تو
ایون اگر آپ جنریٹ کرنا چاہیں ڈیبیٹ کسی سوال پر، اگر میں کوئی سوال پوچھوں وہ سوال نہیں برداشت کرتے.
دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں تو خود اپنی بات کروں گا، اور میں خود اس کی اپنی کوتاہی کو کا اعتراف کروں گا کہ چند ایسے گروپ ہے کہ میرا ان کا نام لیتے ہوئے بھی میں دو بار سوچتا ہوں کہ
کیا نام نہیں بھی لیتے نا، مسئلہ یہ نام نہیں لیتے نا.
تو اب یہ جو نام نہ لینے والے، یہ جو بے نام ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں، ان کی پشت پر بہت سارے پیسہ آ رہا ہے باہر کے ملکوں سے، اور وہ ہمارے دوست ممالک بھی ہیں بعض. اور دیکھیے یہ سب ہمیں معلوم ہے،
لیکن ہر طرف پیسہ آ رہا ہے، صرف ایک طرف نہیں آ رہا، ہر طرف پیسہ آ رہا ہے.
یقیناً آ رہا ہوگا.
اجازت ہے مدرسے کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، مولانا عطار رحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہ جماعت اسلام فضل الرحمان کے تو مدرسوں کا کلچر بھی ایک ہے. مولانا صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مولانا صاحب، یہ مدرسہ کیا واقعی مسئلہ ہے ایک مدارس میں؟ کیا واقعی ایسا کلچر ہے، ایسی تربیت دی جاتی ہے جس میں برداشت ختم ہو جاتی ہے، لڑائی کا ایک ایلیمنٹ نکل آتا ہے اس میں مولویوں کی شکل میں؟ وہ کہتے ہیں کچھ مولوی ایسے ہیں جو سارا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مدارس کا مسئلہ نہیں. مدارس میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے اور دین کی تعلیم سمجھائی جاتی ہے. یہ وقت کی حکومتوں کی اداروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس طرح کے مسائل کو اٹھایا جاتا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، انگریز کے دور کی بات ہے.
لیکن مسئلہ ہے تو اٹھایا جاتا ہے نا جی، مسئلہ کریٹ تو نہیں کرتے. وہ یہ تو نہیں کہتے مولانا صاحب کاشف باسی نے آپ کے خلاف بات کی ہے تو آپ کہیں گے جی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. کوئی ایک ایسا مسئلہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس کو اٹھانے کے آسان ہے اٹھانا اس کو؟
کاشف بھائی، مسئلہ یہ نہیں ہے. میں گزارش کروں کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے یہ لڑائی. یہ جن کی ضرورت ہے وہ لوگ ان مسائل کو اٹھاتے ہیں. اب جب وہ لوگ اٹھائیں گے اور انہوں نے اس چیز کو مسئلہ بنایا ہوا ہے، یہ مدارس کا مسئلہ نہیں ہے. نہ مدارس جو ہے اس طرف کی تربیت کرتے ہیں، نہ مدارس میں اس طرح کی ڈیبیٹ. اور جن لوگوں کی بات رومی صاحب نے کی، ان کا نام میں بھی نہیں لے سکتا جن کے ہاتھ میں بندوق ہے، آپ بھی نہیں لے سکتے. تو وہ لوگ وہ ہیں جن کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے اور اسی چیز کی تربیت دی جاتی ہے. تو جب میں نہیں لے سکتا تو آپ نہیں لے سکتے، کون لے گا ان کا نام؟
کون لے گا؟ وہ کہتا ہے مدرسہ میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ یہ یہاں کہا جا رہا ہے مدرسے کا مسئلہ. وہ کہتا ہے مدرسے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو دین پڑھایا جاتا ہے.
دیکھیے میرے خیال میں
اس کی سوچ میں فرق ضرور ہو سکتا ہے.
میرے خیال میں ہمیں سچ بولنا چاہیے. فساد فی الارض پھیلانے میں جتنا رول پاکستان میں دین کے نام پر کیا گیا ہے، نقش کیا پلے کیا گیا دین کے نام پر، اور کسی چیز پر نہیں کیا گیا. جتنے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں ان کے ناموں کے ساتھ مولوی لگتا ہے، مولوی فلاں، مولوی فضل اللہ، مولوی فلاں، مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں. یہ حقانی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، مدرسوں سے نکلے ہیں یہ، ان کی سوچیں مدرسے میں بنی ہیں. راولپنڈی میں عاشور کی رات کو جو مدرسے جو مسجد اور امام بارگاہیں اور قرآن جلا رہے تھے، ان کی عمریں 16 اور 22 سال کے درمیان تھیں، وہ پنڈی کی زبان نہیں بولتے تھے، وہ طالب علم تھے مدرسوں کے. وہ کتنے ظالم اساتید اور مدرسے کے مدرسین ہیں جو لوگوں کے بچوں کو ان راستوں پر لگاتے ہیں. کیا ہمارے مدرسوں سے ہی پڑھ کر جہادی نہیں بنائے گئے، افغانستان میں نہیں بھیجے گئے، ان کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں دیا گیا؟ کیا یہ مدرسوں سے نہیں نکلے تھے؟
یہ کیوں کرتے ہیں؟
لہٰذا یہ ایک سوچ ہے. ایکسٹریمزم انہیں سکھایا گیا ہے، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ طاقت کی زبان سے بات کرنی ہے. آج وہ انسانوں کے گلے کاٹتے ہیں، بدنوں کے ٹکڑے کرتے ہیں. فوج کے لوگ شمالی وزیرستان میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان پر اٹیک کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں. پاکستان سے لے کر شمالی افریقہ تک یہ ایک تکفیری سوچ ہے جو اسلام کے مقابلے میں ہے، اسلام کا امیج خراب کر رہی ہے. یہ اسرائیل سے لڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ امریکہ سے لڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنے عوام کے خلاف لڑ رہے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. عراق کے اندر دھماکے دیکھیں، شام میں دیکھیں، آپ مصر میں دیکھیں، لیبیا میں دیکھیں، الجزائر میں دیکھیں، مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، ٹیونس میں دیکھیں. لہذا یہ ایک طبقہ ہے جو مدرسوں میں بھی ہے، جو مسجدوں میں بھی ہے، جو اور جگہوں کے اوپر بھی ہے. لہذا البتہ وہ مدارس جو دین کی تعلیم پھیلاتے ہیں، جو واقعا وہاں پر اعتدال سکھایا جاتا ہے، وہ بھی ہیں. اور آپ جو ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں علماء سے، آپ پاکستان کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو اختلاف رائے رکھنے کے باوجود بھی ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں.
ڈائیلاگ پہ میں
جو بندی علماء کے اندر زید الراشدی صاحب ہیں اور اس طرح کے بزرگ علماء موجود ہیں.
میں پہلے عطار رحمان صاحب سے پوچھتا ہوں. عطار رحمان صاحب، ان کا ماننا ہے کہ مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو مارنا ہے؟
کاشف بھائی
جی جی،
میں گزارش کروں، جس طرح تھانوی صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں نے علماء کا لبادہ اوڑھ کر یہ کام شروع کیا ہے، کسی मरकज पर मदरसे की तख्ती लगा देने से मदरसा नहीं बन जाता। पटरासी में अगर किसी को तरबियत दी जा रही थी या कैंपों में किसी को तरबियत दी जाती है तो वो मदरसे नहीं होते, उनको उन पर मदरसे का बोर्ड लगाकर। आपके पिंडी में या दूसरी जगहों पर अगर ऐसे कोई मदारिस हैं जिसमें इस तरह की तरबियत होती है वो मदरसा नहीं है, वो उनके मराकज हैं, वहां उनको उस तरह की तरबियत, उनको मदरसा न कहा जाए। जिस तरह एक पगड़ी पहन लेने से या दाढ़ी रख लेने से कोई मौलवी नहीं बन जाता, इसी तरह किसी बिल्डिंग पर मदरसे की तख्ती लगाकर उससे वो मदरसा नहीं बन जाता।
लेकिन ऐसे मदारिस वो तो नाम ले रहे हैं, वो तो कुछ लोगों का, उन्होंने मौलाना फजलुल्लाह का नाम लिया, हकानी साहब का नाम लिया, जो
मुझे ये बतला दिया जाए कि मौलाना फजलुल्लाह साहब कौन से मदरसे के फारिग तहसील है।
आप जो खालिद खुरासानी साहब कहाँ के पड़े हुए हैं, हकानी साहब जो उनके नायब बने हैं वो मदरसा हकानिया कोड़ा खटक के पड़े हुए हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा है कि बड़े पढ़े लिखे आदमी है, वो फतवा देते हैं।
हाँ, मैं गुजारिश करूँ अपना हजरत साहब की ये जो मदरसे में पढ़ते रहे वहाँ उनको ये तरबियत नहीं दी गई। ये मदरसे से निकलने के बाद जब पटरियासी या किसी दूसरे मरकज में गए हैं वहां उनको ये तरबियत दी गई, और जिन लोगों को इस रास्ते पर डालने की कोशिश की जाती है ये इदारे करते हैं। किसी मदरसे में इस तरह की तरबियती मराकज नहीं है।
ठीक,
मदरसे को बदनाम करने के लिए इस तरह के मराकज कायम करके उन पर मदरसे की पट्टियां लगा दी गई है।
मेरा ख्याल है हम मसले को जरा अंडरस्टेट कर रहे हैं, ये मेरा अपना जाती ओपिनियन है। मसला इससे बहुत बड़ा है, मसला उस बुनियादी इख्तलाफ का है जो मुख्तलिफ अकायद में मौजूद है, जिसमें एक दूसरे के लिए बर्दाश्त नहीं। हमारे मुल्क में बंदूक उठाना आसान हो गया, अब जो पहले बहस से
मेरे ख्याल में उलमा बैठते हैं, बड़े उलमा बैठते हैं, बड़े बड़े फोरम बने हुए हैं, वो जो एक मकतब के नुमाइंदा उलमा है वहां तो लड़ाई नहीं करते वो।
देखिए, अगर मुझे इजाजत दीजिए तो मैं थोड़ी सी
थानवी साहब को उसके बाद आपके कर इजाजत है, मैं थानवी साहब काफी देर से खामोश है, क्योंकि थानवी साहब मैं इसलिए इसकी निशानदेही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत वो जज्बात देख चुका हूं बहुत जगह पे जहां पर बहस की तो गुंजाइश ही नहीं है। या तो आप हमसे इत्तफाक करते हैं या आप हमसे इख्तलाफ करते हैं, और यह मैंने बहुत जगह पे देखा, किसी एक फिरके की बात यह है कि एक मसलक की मैं बात नहीं कर रहा, ये वहां से ये मामला शुरू होता। देखिए, हमारे टीवी पे आपने आज तक कहां डिबेट देखी है कि मैं अगर अहले सुन्नत का हूं या मैं अहले तशी हूं या मैं किसी और मसलक का हूं, क्यों हूं? मुझे तो आज तक अक्सरियत लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि वो किसी मसलक के साथ क्यों, सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके वालिद साहब उस मसलक से थे या वालदा उस मसलक से। थानवी साहब
जी,
तो इसका
तो असल जी
जी थानवी साहब अगर जवाब दीजिए इसका तो कि ये हम इसको
क्या। मैं आपकी बात जी हाँ, देखिए मैं असल में अर्ज करूं, मैं माशाल्लाह बातें सुन रहा हूं और ये तो वाकई ठीक नहीं है ये बात कि गोया मदरसों से इसको बिलोंग किया जाए। मदरसों से निकलने के बाद ही कोई ये तब्दीलियां आई हैं बाग़ों में जिनमें तरबियत की कमी है, लेकिन बात असल में ये नहीं है काशिफ अब्बासी। अब मैं वो जो रजा रूमी साहब ने ये बात कही कि ये जो वॉल चौकिंग है और ये सब कुछ है, ये अगर इसको काबू में किया जाए जिससे इश्तियाल फैलता है और बाकायदा ऐसे गोया छान छान फटक के ऐसे ऐसे जुमले और अल्फाज लाए जाते हैं और सबकी तरफ से, मैं आपसे अर्ज करूं बात शिया सुन्नी की नहीं है, जो स्कूल ऑफ थॉट्स यहाँ पाकिस्तान में मुसल्लमा हैं, चार हैं वैसे तो पांच कह दिए जाते हैं, लेकिन ये कि सब ने अपने अपने अंदर जो हैं अस्करी विंग्स बना रखे हैं और बाकायदा उनके वो लड़ने वाले, मैं इस बात को बहुत
सख्त बना रखे और कह चुका हूँ।
ये हकीकत ये है कि बड़े बड़े उलमा जैसे आपके स्क्रीन पे भी मौजूद हैं और इन सब को चाहिए कि ये आए और आके बाकायदा इन सब से अपने अपने जो अस्करी विंग्स हैं इनसे बराअत का इजहार करें और इनके बिल्कुल इनको अपने से अलग करें, तब जाके कोई इसका शायद कोई इसका सिलसिला बर्फ पिघलनी शुरू हो। ये हमारे हजरात जो हैं इसकी बिल्कुल कोई मसला किससे बचा हुआ नहीं है और इसकी जरूरत है। तो बस ये है कि ये जो असल में वॉल चौकिंग और इसका अच्छा एक चीज मैं आपसे और अर्ज करूं, आपके देखिए मैं इंग्लैंड में भी देखता हूं यही मसलक सारे के सारे मौजूद हैं,
इंडिया में
शिया सुन्नी कादियानी बरेलवी देवबंदी सारे, लेकिन वहाँ पे कोई इस किस्म की कोई मसले नहीं होते। वहाँ क्या जाके जज्बात जो है ठंडे हो जाते हैं, वही चीजें हैं जो यहाँ भी हैं।
लेकिन ये मौलाना साहब की वजह मुफ्ती साहब ये है कि यहाँ पर जब मजहब की बात होती है तो हम बाकियों को कहते हैं ये हमारा मसला, आप इसमें से साइड पर हो जाएं। जो मजहब के ठेकेदार हैं वो हर मसला किसी मसलक से भी हो वो मजहब को अपने हाथ में ले लेते हैं कि इसका फैसला हमने करना, रियासत भी साइड पर हो,
रियासत किसी
ये जो लिबरल अपने आप को कहते हैं ये भी साइड पर हो जाए। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, मजहब के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। मुझे तो इख्तियार ही कोई नहीं देगा,
रियासत सुप्रीम है पाकिस्तान में,
होनी चाहिए, होनी चाहिए, है नहीं।
लेकिन जिसके जिसके पास रियासती इख्तियारात है वो इस्तेमाल करे ना उनको।
जी मुथानवी साहब की सुनूं फिर
इसके सर्च करूं। काशिफ अब्बासी साहब
जी, थानवी साहब
मैं देखिए अगर कोई आलिम या हाफिज कारी और दाढ़ी वाला और मौलवी सूरत उससे कोई अखलाकी जुर्म हो जाता है कोई खुदा ना करे तो उसको तो इतना हाईलाइट भी किया जाता है अखबारों में और हर जगह, उसमें कहीं ये डर खौफ नहीं होता कि साहब सेंसिटिव मसला है। ये नहीं है किसी किस्म का भी जुर्म है इस उलमा के तबके में, तो मैं वल्ला इस बात को कहता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर एक्शन ले, वरना ये सिर्फ पाकिस्तान की स्पेशलिटी हो गई है। इंडिया में सब मौजूद है।
मेरे साथ अता रहमान साहब को सुनूं, मैं आज भी द लास्ट वर्ड बिफोर द ब्रेक। अता रहमान साहब क्विकली आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आपका वैसे बताइए, आपका भी अस्करी विंग है कोई?
गुजारिश करता चलो कि देखिए पूरे मुल्क में आप जायजा दे दें फिरकावारियत की, जो मजहबी फिरकावारियत है उसको तो यकीनन उछाला जाता है और उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, जबकि कौमियत और दूसरे जो फिरकावारियत की रास वो है लिसानियत कौमियत, अभी इनको कभी आपने नहीं देखा होगा कि कहीं इकट्ठे होकर बैठे हों या इनकी क़यादत कहीं इकट्ठे होकर बैठी हो। उलमा मजहबी तबका हमेशा कोशिश करता है कि किसी तरीके से मजहबी लोगों को इकट्ठा किया जाए और मजहबी लोगों में ही वो क़यादत मौजूद है जो
इन्होंने ठीक बात कही है। सियासी तौर पर तो मैंने खुद इकट्ठे होते देखा है, बल्कि उस दिन मैं समीउल हक साहब से मिला, उन्होंने कहा जी आपको याद है ट्रेन मार्च किया था एमएमए ने और आप हमारे साथ गए थे, बिल्कुल मैंने देखा। लेकिन मैंने ये भी देखा कि कोई दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ सकता सर, ये तो इख्तलाफ है, ये भी समझ नहीं आती क्यों कौन ठीक है कौन गलत है, ये तो डिबेट कर ही नहीं सकते।
नमाज में भी काशिफ भाई हम बदनाम है एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने में भी, लेकिन ये मीडिया क्यों ये रोल अदा करता है कि किसी भी छोटे मसले को इस तरह उछाल उछाल कर पेश करते हैं? कभी आपने कौमियत पर बात की है, कभी लिसानियत पर बात की है, कभी इलाकाइयत के मसाइल को उठाया आपने? लेकिन
आप
है, वो भी एक रोल अदा कर रहा है और मजहबी मुनाफरत फैलाने में मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है।
बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि पहली बात तो ये मौलाना साहब हम बात कर ही नहीं सकते, ये किसने कहा कि हम बात करते? मैं आज भी खुल के नहीं कह सकता जो मैं कहना चाहता
हूँ।
अगर आप आज इस पाकिस्तान को कायदे आजम और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना दें बात भी कर सकेंगे, बर्दाश्त भी होगी। अगर ये पाकिस्तान बनेगा रिजिड किस्म के कम पढ़े लिखे गैर मंतकी जायल मुल्लाओं का पाकिस्तान जो असले के जोर पर अपनी बात ठोसना चाहते हैं, मुल्क को ना अमन करके तबाह करना चाहते हैं, तो फिर इस बात यहाँ पर कोई बात नहीं हो सकती। हमें कायदे आजम का पाकिस्तान चाहिए।
आपके पास
मेरी बात सुन, किसके पास?
आपके पास
पाकिस्तान के पास नहीं है,
नहीं है,
मेरी बात सुन लीजिए। अगर अहले तशय्यो कोई अस्करी विंग बनाते तो क्वेटा मैसा से बेगुनाह ना मारे जाते? क्वेटा में बताएं कि एक बंदा भी अहले तशय्यो ने मारा है किसी का? हम ज़िबा होते रहे, हमें बसों से उतार के मारा गया है, हमने पुरअमन एहतजाजात किए हैं, आज भी पूरे मुल्क में आजादारी के जुलूस पुरअमन थे जिसमें शिया और सुन्नी भी शरीक थे, मुअज्जिन उलमा का भी साथ था।
जुलूसों की नहीं है बात, यह है कि ये जो लड़ाई है जिसमें बंदूकें निकल रही
हैं, एक मैं बुनियादी बात कहूंगा,
इसमें है धमाके होते हैं,
एक मैं बुनियादी बात कहूंगा आपसे, देखिए कि मकतबे तशय्यो के जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है ना, इसमें जबरदस्ती हुकूमत करना जायज नहीं है। वो हुकूमत लीगल है, लेजिटिमेसी रखती है जो आवाम की राय से बने, जमहूर जिसे मुंतखब करें। मकतबे तशय्यो के सियासी उसूलों में असला उठाकर बागी बनकर कब्जा करना ये जायज नहीं है। लिहाजा मकतबे तशय्यो के पॉलिटिकल प्रिंसिपल के अंदर हम मार्शल लॉ को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के सियासी उसूल ये वो हुकूमत कानूनी है जो अवाम की राय से बने जिसके साथ अवाम हो।
ठीक जी, ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते हैं नाजी, ब्रेक के बाद जरा डायलॉग की अफादियत। देखिए ये बात हम सारे कहते रहेंगे जी अस्क्रीमिंग है, सारे कहेंगे जी हमारे पास नहीं है, डिनाइल में रहेंगे। हम खुल के बात क्यों नहीं कर पाते इस मुल्क में, क्यों नहीं डिबेट है? डिबेट देखिए जी, मैं अगर मैं समझना चाहता हूँ उस मजहब को, क्यों मुझे कहीं खामोशी में ब्रेक के बाद सर, ब्रेक के बाद ये जो नुकता उठाना चाहता हूँ, क्यों हमें किसी जगह कहीं कोने में किसी अलामा के पास बड़े सोच समझ के माइंड ना कर जाए, क्यों गुस्सा ना कोई कर जाए, क्यों नहीं खुल के डिबेट होती? जैसे हम सियासत पे बात करते हैं, तावर मान साहब ने फरमाया कि आप हर चीज पे बात करते, किसी पे बात नहीं करते, इस पे क्यों करते? मेरा ख्याल है इस पे भी बात नहीं होती, मेरा ख्याल है इस पे भी खौफ है कि कहीं ये चीज बैकफायर ना कर जाए, आप फतवे ना लगने शुरू हो जाए। ब्रेक देते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ब्रेक से पहले जो डिबेट की बात हो रही थी
जी,
वो डिबेट नहीं है इस मुल्क में,
बिल्कुल
इस मुल्क में अपनी अपनी पोजीशंस हैं। और वहां पे
देखिए, जहां पर वायलेंस अस्क्रियत आ जाए तो फिर डिबेट का कल्चर अनका हो जाता है। हमारे जैसे हम बात कर रहे थे कि बड़े शरीर में एक रवायत थी कि बैनुल मज़ाहिब गुफ्तगु होती थी, बैनुल मज़ाहिब मनाजरे होते थे, मकालमे होते थे, दारा शिको आज से 400 साल पहले बातचीत कर रहे थे, बुक्स लिख रहे थे। लेकिन ये चीज ये जो 30-40 साल से ये जो हथियार आ गए हैं, बम आ गए, रॉकेट लॉन्चर आ गए हैं, ये हमारी जो रियासत का जिहाद की जो हमने ठेका लिया हुआ ना असल में अफगानिस्तान में कश्मीर में, ये हमने 4-5 बड़े जिहाद प्रोजेक्ट किए हैं। देखिए 1980s में तो हम अमेरिका और सऊदी अरेबिया के साथ मिलके रूस को भगाया, हमने पूरी की पूरी खेप तैयार हुई है। जो मदरसों की बात हो रही ना, सब मदरसों को हम बुरा नहीं कह सकते, वो तो बहुत सारे गरीब बच्चों की जरूरियात
पूरी कर रहे हैं, एनजीओ है इस मुल्क में,
बिल्कुल बिल्कुल। और हम सबको ब्रैकेट नहीं कर सकते, एक मखसूस तरह के मदरसों की बात कर रहे हैं। 1990 में वही जिहाद इंडस्ट्री जो है वो कश्मीर की तरफ रुख कर दी, हमने कहा अब वक्त आ गया कि हिंदुस्तान से हम आजाद कराएंगे कश्मीर को, साथ ही साथ हमने तालिबान को भी इंस्टॉल किया।
आप एक साइड देख रहे हैं ना,
नहीं देखिए
मसला ये कि वो जो बंदूक उठा के इस्तेमाल करने की वजह है उसको खत्म कर दें, बंदूक और बम खत्म हो जाएगा।
नहीं मेरी अर्ज सुनिए ना, देखिए बंदूक रियासत का काम है, अगर कश्मीर को आजाद कराना है तो रियासत पाकिस्तान जिहाद करेगी इंडिया पर, अगर अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना तो रियासत पाकिस्तान करेगी, प्रॉक्सी ग्रुप्स नहीं करेंगे। अच्छा 2000 में मुशर्रफ साहब ने वो नॉन सैंक्शन जिहाद था कि एक तरफ हम लाए थे अमेरिका के, दूसरी तरफ हम अफगान जो है ग्रुप्स उनकी मदद कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर हथियारों की कसरत हो गई, ये ग्रुप
इस्तेमाल करने वाले
और आज ये सेक्टेरियनिज्म में इन्वॉल्व्ड हैं।
लेकिन इनका एक अलायंस है, ब्रेक में बात कर रहे थे, बहुत सी चीजें हम ऑन एयर नहीं कह सकते, लेकिन जिस वजह से शेरपिंडी का वाकया ज्यादा इंस्टिगेट हुआ, वो जुबान का इस्तेमाल, वो ये चीजें हमें खत्म, ये बहस से खत्म करनी पड़ेगी। मैं थानवी साहब लास्ट वर्ड आपको मैं दूंगा प्रोग्राम खत्म करने से पहले, थानवी साहब इसको कैसे खत्म करें, जिनको हम अब टीवी पर बोल नहीं सकते क्योंकि कोई कहेगा जी आप किसी की दिल आजारी हो रही है, लेकिन ये जो जुबान का इस्तेमाल है जिसकी वजह से बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, ये कैसे खत्म करेंगे, इख्तलाफ कैसे खत्म होगा?
भाई देखिए, इख्तलाफ तो 1400 साल से भी चल रहे हैं और कदीम है, इख्तलाफ तो खत्म नहीं होते। लेकिन एक बात जो है, आज मान ले ये कौम और ये हुकूमतें, या कभी तो मानना पड़ेगा, वो उलमा जिन्होंने शुरू में जो सब मिल के चले, 1951 में 33 उलमा बैठे और उन्होंने अपने 22 निकात बनाए, मेरा मतलब ये है कि उन उलमा को अगर आज भी हाईलाइट किया जाए, उनके नामों को, उनके कामों को, तो इन्हें खुद शर्म आ जाए मसलक वालों को कि हमारे तो सारे जो करीम उलमा हैं वो आपस में मिले बैठे हैं, तो हम कहाँ से नई चीज़ें लेकर आए हैं। एक
मुनकता हो गया, लेकिन उनका नुकता अपनी जगह, लेकिन सर ये बहस उससे ज़्यादा सख्त हो गई और इख्तलाफ उससे ज़्यादा बढ़ गया है जितना शायद 1951 में।
मेरे ख्याल में इख्तलाफात जो इल्मी हलकों में हैं उसी सतह पर मौजूद हैं, लेकिन जब जाहिल को मैदान मिल जाए और इल्म दुश्मनों को मैदान मिल जाए, इंसान दुश्मनों को मैदान मिल जाए, उनके हाथ में असला भी आ जाए और उन्हें ताकत भी उन्हें दे दी जाए और स्टेट अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी
ना
करे, ऐसे ही है हर तरफ, जहां
भी
जहां जहालत है वहां आग है, वहां लड़ाई है, वहां ज्यादती है,
वो कुछ यूट्यूब
पे।